मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 4 फरवरी 2019 है और आज के इस FEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और साथ ही बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं स्वाभिमान पर कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं, जिसे इंग्लिश में हम अक्सर सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। दरअसल इस विषय को चुनने का कारण आप सब ही रहे हैं। पिछले कुछ समय से, मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 2 सप्ताह से, मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आ रहे हैं जिसमें बार बार यह जानने की कोशिश की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि सर, स्वाभिमान क्या होता है। हो सकता है कि यह प्रश्न उन प्रिय श्रोताओं के दिमाग में ईगो पर जब मैं बात कर रहा था उसे सुनने के बाद उठी हो, क्योंकि सामान्यतया देखिए, जब भी आप किसी से भी ईगो के बारे में बात करेंगे तो हर कोई ईगो का विरोध ही करता है। और भारतीय दर्शन में तो यहां तक कहा गया है कि आप अहम शून्य हो जाइए, यानी कि ईगो लेस हो जाइए, तो आप आध्यात्मिकता के चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जितने संकट पैदा होते हैं उनमें से ज्यादातर संकटों की जो जड़ होती है वो ईगो में ही होती है। तो स्वाभाविक है कि आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो ईगो का समर्थन तो आपको करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं देगा। तो जब हम सुनते हैं कि ईगो का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, सब कहते हैं कि ईगो को खत्म करो खत्म करो, तो फिर हमारा स्वाभिमान कहां रह जाएगा? सेल्फ रेस्पेक्ट क्या हम भूल जाएं? कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाए हम चुपचाप सुन लें? हम अपने जो अधिकार की बात तो खैर अलग तरीके से हो जाती है, क्या हम अपनी जो हमारी जो रेस्पेक्ट है, हमारा जो अपना आत्माभिमान है कह लीजिए, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं, हमारी अपनी जो प्राइड है, हमारी जो अपनी अहमियत है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, क्या हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें? फिर तो हम एक प्रकार से मिट्टी के लोंदे जैसे हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि थाली में रखे हुए बैंगन जैसे हो जाएंगे, कि थाली जिसके हाथ में है उसने जिधर भी थोड़ा सा झुकाया बैंगन पता लगा कि लुढ़क करके उधर ही पहुंच गया। यानी कि अगर हम बहुत ही सामान्य और बोलचाल की भाषा में बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि जो चाहे वो हमें लतियाता रहे। क्योंकि जब हम स्वाभिमान के बारे में सोचते हैं, या यूं कह लीजिए कि ईगो को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, तो सोचते 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 हम इसी छोर पर आकर के रुकते हैं। इसका मतलब तो यह है कि जो भी चाहे, हमें जो कुछ भी कहकर जाना है चले जाए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सुन लेंगे। तो क्या हम में पुरुषार्थ नहीं है? क्या हम में शक्ति नहीं है? क्या हम में क्षमता नहीं है? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने डरपोक हैं? इस तरह की ढेर सारी बातें फिर हमारे दिमाग में आने लगती हैं और तब स्वाभाविक रूप से फिर एक प्रश्न हमारा दिमाग जनरेट करता है, पैदा करता है, और वो ये, तो क्या स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं होती है? क्या हम में स्वाभिमान नहीं होना चाहिए? मित्रों, अगर व्यावहारिक स्तर पर हमारे दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि हम जब व्यावहारिक जगत में एंटर करते हैं तो चीजें बड़े अलग तरीके से वहां इंटरेक्ट कर रही होती हैं, बड़े अलग तरीके से उनके व्यवहार दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि हम सिद्धांत में कोई भी बात कहें, दर्शन शास्त्र के तहत हम कुछ भी कहें, लेकिन मित्रों, यहां जहां तक स्वाभिमान का सवाल है, मैं अब कुछ तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इसे किस रूप में लेंगे, और सच पूछिए तो मैं यह भी जानता हूं कि शायद मेरी बात आप सबको उस तरीके से स्वीकार्य न हो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने स्तर पर इस पर विचार करें और विचार करने के बाद अपने अपने लिए अपने बिंदु चुन लें, अपने व्यवहार के रास्ते चुन लें कि आपको कैसे इसे हैंडल करना है। फ्रेंड्स, मैं 2-3 उदाहरणों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। बचपन में हम लोग जब थे तो एक दोहा हम लोग पढ़ते थे जिसकी पहली लाइन तो मुझे याद आ रही है, क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का करी हरी घट गयो जो भृगुने मारी लात। इसमें जो शुरू का है थोड़ा सा फर्क हो सकता है, भृगुने मारी लात ये बिल्कुल सही है। एक पौराणिक कथा है। कथा ये है कि एक भृगु ऋषि जो थे वो जानना चाहते थे कि जो विश्व में जो ब्रह्मा विष्णु महेश या और जो देवी देवता हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है। तो किसी ने बता दिया कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। मैं हो सकता है कि कथा थोड़ी सी इधर उधर हो रही हो लेकिन सार में कोई फर्क नहीं है। तो भृगु ऋषि ने टेस्ट करने के लिए पहुंचे वो विष्णु भगवान के साथ पास, और विष्णु भगवान अपने चीर सागर में शेष सैया पर आराम फरमा रहे थे और उनके जो पैर की तरफ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी वहीं बैठी हुई हैं, यानी कि उनकी पत्नी वहीं है। भृगु ऋषि गए और भृगु ऋषि ने जाते ही उनके सीने पर तेजी से के साथ लात मारी, ठोकर मारी। और भृगु ऋषि ये मान करके चल रहे थे कि इस तरह से मैं इन्हें अपमानित कर रहा हूं तो स्वाभाविक तौर पर ये तिलमिला उठेंगे और मुझे भला बुरा कहेंगे, हो सकता है कि झगड़े की लड़ाई की नौबत ही आ जाए, श्राप ही दे दें। लेकिन हुआ बिल्कुल उनके अनुमान के विपरीत। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैरों को सहलाते हुए, यानी कि उनके चरण को सहलाते हुए कहा कि ऋषि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इन पैरों को चोट पहुंच गई हो, क्योंकि देखिए आपके पैर तो इतने कोमल हैं और मेरा जो सीना है इतना कठोर है, तो कठोर सीने से जब आपके कोमल पैर टकराएंगे तो हो सकता है कि उसमें चोट लग गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चोट लगी हो। भृगु ऋषि पानी पानी हो गए और मतलब आप यूं कह लीजिए कि यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में जो भगवान विष्णु हैं वो सर्वश्रेष्ठ देव हैं। मित्रों, ये एक उदाहरण है। अब इसको आप स्वाभिमान के पैमाने पर रख करके थोड़ा सा कसने की कोशिश कीजिए, कसौटी पर देखिए, है ना। अपने अपने ढंग से हमें चीजों के बारे में विचार करने चाहिए, क्योंकि देखिए हम सब का भरण पोषण अलग तरीके से हुआ है, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां बिल्कुल अलग अलग हैं, उसी के आधार पर हमारी सबकी अपनी अपनी धारणाएं बन गई हैं। अब सवाल यह है कि जो हमारी धारणाएं बन गई हैं, क्या हम उन्हीं को सच मान करके चले? तब तो मुश्किल हो जाएगी। हमें एक सार्वजनिक धारणा सत्य को स्वीकार करना पड़ता है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करें, और ज्यादातर लोग किसे स्वीकार करते हैं? जिससे ज्यादातर लोगों का हित सधे। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी धारणाओं को, जो सार्वजनिक धारणाएं हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा हित सधता है, उसके करीब ले जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह दूं कि नहीं साहब मेरी तो ये धारणा है, हमारी तो संस्कृति यही कहती है, हमारे यहां के लोग यही कहते हैं, हमारी जाति यही कहती है, हमारा धर्म यही कहता है, तो हम तो यही मानेंगे। मुझे लगता है कि समय के साथ उन सब में संशोधन किया ही जाना चाहिए। मित्रों, आइए अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं, कृष्ण का उदाहरण। अब आप देखिए कि कृष्ण के दो आपको संदर्भ बताता हूं कि एक जब महाराज युधिष्ठिर अपने यहां यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में सभी लोग पधारे, कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया, कृष्ण भी आए उसमें। तो सभी को काम सौंपा जा रहा था, क्योंकि देखिए राजा महाराजा बुलाए जाते हैं उस क्षेत्र के, बड़े बहुत बड़ा आयोजन था वो। तो सबसे युधिष्ठिर ने पूछा कि बताइए आप क्या काम करना चाहेंगे, क्या काम करना चाहेंगे। तो जब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि आप बताइए कि आपको कौन सा काम दिया जाए कृष्ण, तो कृष्ण ने कहा कि मुझे जो हमारे यहां मेहमान आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, मैं आज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, उनके पैर धोने का काम दिया जाए और मैं उनके पैर धोना चाहता हूं। अब कृष्ण ने मांगा था जो काम, कृष्ण को दिया ही जाना था। तो अब आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं कृष्ण उनके पांव धो रहे हैं। पहले यह परंपरा होती थी, घर में घुसने से पहले उनके पांव पखारे जाते थे, क्योंकि वो जनरली पैदल चल करके आ रहे हैं तो घर में धूल है और दूसरी चीजें लगी हुई है, तो घर स्वच्छ रहे तो पैर उनके पखारे जाते थे। पैर धोने का काम कृष्ण ने लिया। अब आप सोच करके देखिए कि अगर हम अपने सामंतीय दिमाग के आधार पर सोचें, और हम सब सामंतीय दिमागों की जकड़न में हैं, तो पैर धोने का काम हमें बड़ा घटिया काम लगता है। यार हम पैर धोएंगे आने वालों के? हम तो राजा हैं, हम तो दार्शनिक हैं, हम तो भगवान हैं। और मजेदार बात आप देखिए कि उसी यज्ञ में बकायदे कृष्ण की पूजा की गई है, उनको बैठा करके बकायदे उनकी पूजा अर्चना की गई है, उन्हीं कृष्ण की जो आने वालों के पांव धो रहे हैं। इसको जरा स्वाभिमान की कसौटी पर कसकर देखिए। चलिए कृष्ण की एक बात और मैं आखिरी में आप सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी अब कुछ संकेत कर रहा है कि अब मैं अपनी आवाज बंद करूं। आप देखते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है, आप उस चित्र को देखिए तो कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं, अर्जुन ऊपर बैठे हुए हैं रथ पर, है ना, और युद्ध के लिए कृष्ण रथ को चला रहे हैं। उसका एक आप प्रतीक देख, प्रतीक क्या मतलब, आप कह रहे जो व्यवहारिक की अर्थ आप देखेंगे तो पहला तो यह कि अर्जुन ऊपर है और कृष्ण नीचे है, और नीचे भी कहां है, कृष्ण जो बैठे हैं वो अर्जुन के पैरों के पास बैठे हैं। कल्पना करके देखिए कि जब हम व्यावहारिक जगत में जाते हैं तो पैरों के पास हमारे कौन बैठता है, नेता के पैरों के पास उसके कार्यकर्ता बैठे रहेंगे, गुरुजी के चरणों के नीचे उसके शिष्य बैठे रहेंगे, जो पंडित पुजारी और हमारे ऋषि मुनि हैं उनके पैरों के नीचे उनके शिष्य बैठे रहेंगे, है ना। लेकिन कृष्ण यहां याद रखिए कि कृष्ण यहां बाकायदे द्वारकाधीश हैं। भगवान की बात चलिए हम छोड़िए, लेकिन द्वारका के राजा तो हैं, लेकिन अर्जुन तो राजा भी नहीं है। लड़ाई ही तो इस बात की हो रही है ना कि हमको राजपाठ दो, हमारा हिस्सा दो। तो अर्जुन तो बेसिकली अप्रूव्ड किंग तो नहीं है, लेकिन कृष्ण तो अप्रूव्ड किंग है। इसके बावजूद वो अर्जुन के पैरों के नीचे बैठे और ड्राइवरी ही कर रहे हैं ना, रथ हांक रहे हैं तो ड्राइवरी ही कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए जो दूसरी स्थिति है जिसकी तरफ हम लोगों का अक्सर ध्यान नहीं जाता है। अब अर्जुन को कहीं रथ को तेज चलवाना है, कहीं लेफ्ट करवाना है, कहीं राइट करवाना है, कहीं रुकवाना है, ये तो अर्जुन ही बताएंगे ना कि अब तुम किस तरीके से मेरे रथ को किधर ले जाओ, कितनी स्पीड में किधर घुमाओ, क्योंकि वो जिस तरीके की जरूरत होगी अर्जुन उसी तरह का कृष्ण को संकेत करेंगे। लेकिन वो बोल करके तो युद्ध क्षेत्र में किया नहीं जा सकता है, वहां तो इतनी हाहाकार और ये मची हुई, तो आप बोल करके कैसे बताएंगे। तो उसके लिए बकायदे उस समय की जो रथ का विज्ञान है उसमें दिया हुआ है कि जो अर्जुन है यानी कि जो रथ जो महारथी है वो अपने अंगूठे से जो रथ को हांक रहा है उसकी कमर पे दबाव डालता था, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि कचोटता था। इसे और दूसरी भाषा में कह लीजिए कि अर्जुन अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों से कृष्ण के कमर को लगातार कचोट कचोट करके कह रहा है कि अब मेरे रथ को ऐसे ऐसे तुम चलाओ, और कृष्ण उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके रथ को हांक रहे हैं, जबकि वो राजा है, अर्जुन राजा नहीं है। मित्रों ये दूसरा उदाहरण है। इसके आधार पर आप सब थोड़ा सा स्वाभिमान के ऊपर विचार करके देखें, और फिर आप जब मुझसे कुछ और पूछेंगे, कुछ जानना चाहेंगे, तो मैं इस विषय पर आगे बात करूंगा। तो मित्रों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, बेहतर होगा कि आप सब न केवल खुद ही विचार करें बल्कि इस पर बातचीत भी करें तो आपको खूब मजा आएगा। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, इसके लिए मित्रों माफी चाहूंगा और इजाजत भी। नमस्कार।